ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बाशर 6472903773 6472903773।
जस्टिन ट्रूडो ने जिस काम की शुरुआत की थी सी, मार्क कार्नी भी उही काम नु कंटिन्यू करने दे लिए आगे ने। कोई फर्क नहीं पैंदा ओ की कहंदे ने, पर तुसी पे करदे ही
रहना।
कार्बन टैक्स कार्नी, एह बिल्कुल ही जस्टिन वर्गे ने।
दिस मैसेज इज फ्रॉम द कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कैनेडा।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मुईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मुईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक यू थ्रू आउट ओंटारियो, नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक यू 519-622-0660 quicktruckcube.com।
ब्रैम्पटन दे विच स्नो दे दौरान कुछ जरूरी हिदायतां। बर्फबारी दौरान सड़क ते पार्किंग दी मनाही है। इस दौरान सारे वाहनां नूं सड़क तों हटा दियो ताकि स्नो प्लो बर्फ नूं साफ कर सके, नहीं तां गैर कानूनी पार्किंग दे दौरान टिकट दित्ती जावेगी, जुर्माना होवेगा अते गड्डी जब्त भी कीती जा सकदी है। ब्रैम्पटन प्लो ट्रैक्टर नाल अपने नेबरहुड विच बर्फ साफ करन दी प्रगति नूं 311 ऐप ते ट्रैक करो। 24 घंटियां विच सारियां सड़कां साफ कर दित्तियां जाणगियां, पर भारी बर्फबारी दौरान इह सड़कां नूं साफ करन ते 48 घंटे वी लग सकदे ने। अगर बर्फ हटाउण समस्या है तो कृपा करके बर्फ खत्म होने के 24 घंटों बाद ही इसकी रिपोर्ट करो। ज्यादा जानकारी लिए brampton.ca/snow ते जाओ।
हाय हाय, आजकल दिया ससा कितनी जवान ने यार, देखो ते जरा।
बीबी जवान नहीं, डॉक्टरों का कमाल है। BNC मेडिकल क्लिनिक के डॉक्टर अंकुश, वन ऑफ द टॉप 3 डॉक्टर्स इन ब्रैम्पटन। माथे पर, चेहरे पर झुर्रियां यानी रिंकल्स, लिप ट्रीटमेंट, नोज ट्रीटमेंट, बोटॉक्स एंड फिलर्स के जरिए, और हाँ अगर आपके बाल गिरते हैं तो PRP के जरिए हेयर लॉस का इलाज भी। ऑलवेज गो टू एक्सपर्ट, ही विल मेक यू लुक मच यंगर। BNC क्लिनिक के डॉक्टर अंकुश 4377578191। Call anytime.
अदनान अलवी, प्रेसिडेंट लाइफ टाइम ग्रुप। अदनान अलवी को कौन नहीं जानता। आप पिछले 15 सालों से अपनी कम्युनिटी को एजुकेट कर रहे हैं कि किस तरह अपनी इनकम और अपनी वेल्थ को इंक्रीज किया जा सकता है। आपके लिए हमेशा यूनिक और इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट आइडियाज लेकर आते हैं। अगर आप आज की बदलती हुई रियल एस्टेट मार्केट से परेशान हैं और चाहते हैं कि आप अपने पैसों को ज्यादा सिक्योर रखते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट बनाएं, तो आज जी अदनान अलवी से राब्ता करें। 416-301-0249।
कौन कहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां वक्त पर क्लेम अदा नहीं करती। एक और मिसकंसेप्शन कि लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी या फिर ट्रेवल इंश्योरेंस बहुत महंगी हैं। नहीं साहब, आप एक बार इंश्योर प्रो के फजल वदूद से बात कीजिएगा। 28 इयर्स ऑफ अंडरराइटिंग एक्सपीरियंस एंड 2 इयर्स इन द फील्ड। लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, ट्रेवल इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस के मामले के लिए फजल वदूद ऑफ इंश्योर प्रो 905-607-5000
416-502-8000। स्ट्रेस चाहे लाख का हो या काकता, उस जिंदगी मुश्किल कर देता है। बाकी बातें एक तरफ, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस का हल है शिराज शफीक, जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स। लास्ट मिनट क्लोजिंग्स हो या डिफिकल्टीज, सभी के लिए शिराज शफीक 416-502-8000। लाइसेंस नंबर 10845। इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड।
खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो न सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें। आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157 416-570-0157।
चांदनी
चांदनी
चांदनी चांदनी।
चांदनी बैंक्वेट हॉल,
इंटेलिजेंट चॉइस लोकेशंस, साउंड सिस्टम इनोवेशंस, चांदनी बैंक्वेट हॉल,
30 इयर्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस, कॉर्पोरेट इवेंट, एग्जीबिशन, एक्सपो और एनी सेलिब्रेशन,
इंडोर एंड आउटडोर गोल्फ कोर्स फैसिलिटीज, चांदनी बैंक्वेट हॉल। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल टुडे एट 9054588888, 9054588888 और विजिट chandnivictoria.ca।
इन सब कामों के लिए तो मुझे बैक होम ही जाना पड़ेगा।
कौन से काम?
वही, बेटी की शादी सर पर है और ज्वेलरी का खास काम अभी तक नहीं हुआ।
बस इतनी छोटी सी बात, पायल ज्वेलर्स पे हर किस्म की ज्वेलरी है और वो स्पेशलाइज करते हैं इन सब में ही, दुबई, सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान और यहाँ की तमाम लेटेस्ट ज्वेलरी।
मुझे उनका एड्रेस बताओ, मैं आज ही ये काम जाके करवाती हूँ।
जी जी बिल्कुल, पायल ज्वेलर्स का एड्रेस है 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव, यूनिट 42, ब्रैम्पटन। पायल ज्वेलर्स के असलम भाई को कॉल करें ना एट 9057907879, दैट इज 9057907879।
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਮਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, 3-ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ, ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਸ਼ਾਰਪ, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦਾ ਟਾਊਨ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਮਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ। ਬ੍ਰੈਮਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ, 801 Bowie Drive West, Brampton, या कॉल करो 9054502828, 905-450-2888।
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कड़ाही, शिनवारी गोट कड़ाही, निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका। 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट, मिसिसागा, यूनिट 3। ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800।
जी सामाई नाजरी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से खुशकर व सेहतमंद होंगे। भाई हमारा और आपका साथ रहेगा हमारा और आपका साथ रहेगा आज भी। हम तो वैसे आपके साथ 24 आवर्स है, याद है आपको, 24 आवर्स हम आपके साथ हैं। किस तरीके से ये नंबर है कहा हमने यहाँ पर 6476201778 तो स्टूडियो का नंबर है 6478724900। इस नंबर को अभी भी डाल करके देख ले आप, सेव कर लें। एनी टाइम 24 आवर्स यू वॉन्ट लिसन टू 7:70 AM आप ये नंबर डायल करें, इट डजेंट कॉस्ट यू एनीथिंग। और इसके साथ साथ अगर आपने हमें देखना है तो भाई अपना किसके पास एक टेलीफोन नहीं है, हर एक के पास टेलीफोन है। www.eawaz.com eawaz.com पे जाइए, वहां पर आप अलग अलग भरा करें आपका साहब, आप हमें सुन भी सकते हैं। वहां पर एक लिसन लाइव का बटन होगा और एक वॉच लाइव का बटन है, जो वहां पर आप हमें देख भी सकते हैं। आज से साहब हमारा पश्तो का शुरू हो गया है, एक उर्दू में आप सुनते हैं, हमारी वेबसाइट पढ़ते हैं, सारी न्यूज वगैरह सब कुछ, और इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। अब आज से आप पश्तो में भी पढ़ सकेंगे सब, आहिस्ता आहिस्ता। ऑफ कोर्स अब क्या रह गया, पंजाबी रह गई है, अब बलोची रह गई है और सिंधी रह गई है, बस इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम एक एक करके सब सारी जितनी भी पाकिस्तान की 5 जबानें हैं, उर्दू में तो है ही, उसके अलावा 4 जबानों में आप हमारा वेबसाइट को पढ़ सकेंगे।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और eawaz.com पे आप आएं, मकसद सिर्फ यही है कि जहां जहां आप हमारे कोरेस्पोंडेंट्स होते चले जाएंगे, हमारी कोशिश होगी उस इलाकों में हम इंटरनेशनल न्यूज की तरफ लेके जरूर जाएं, क्योंकि पाकिस्तान का मामला ये है कि वहां पर हम ज्यादातर पाकिस्तान की न्यूज के साथ ही घिरे हुए हैं। और मजबे आपको पता होगा कि इंटरनेशनल जो दुनिया इस वक्त जिस हिसाब से तब्दील हो रही है, और वो पाकिस्तान के ऊपर भी वो सूरत हाल जरूर होती है। हम सिर्फ हर चीज को अपने ही तनाजर में, एक कुएं के बीच में हम बैठे हैं और उसी तनाजर में हम पाकिस्तान को देख रहे हैं। तो जिसकी वजह से अभी भी अगर आप वेबसाइट पे आते हैं और आप वेबसाइट पे अगर आके देखें तो हमारा ज्यादा एम्फेसिस जो है वो इंटरनेशनल न्यूज पे है। अगर आप अंग्रेजी की साइट पे आएं, उर्दू साइट पे आएं, व्हाट इज हैपनिंग इन अमेरिका एंड अराउंड द वर्ल्ड, जो कि पूरी दुनिया
और पाकिस्तान में अमेरिका एंड बिकॉज ऑफ अमेरिका
द चेंजिंग वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं, अमेरिका की आज जब आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आई हैं तो यकीनन हमने आपके साथ शेयर किया है कि उर्दू साइट पे अगर आप आएं उर्दू साइट की न्यूज, बल्कि मुझे एक बहुत प्यारी बेटी है जिसने मुझे कांटेक्ट करके कहा था कि यू मस्ट पे स्पेशल अटेंशन टू द उर्दू न्यूज, क्योंकि बहुत से लोग उर्दू की खबरें देखना चाहते हैं। और उनको आज हमने एक एक्सरसाइज के बारे में भी इस वेबसाइट के ऊपर डिटेल दी है कि उसके क्या फवायद हैं, और जो कि बॉडी शेप करने के लिए, बॉडी की इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए दिस एक्सरसाइज इज कंसिडर्ड वेरी गुड। और हमारी वो भी हमने इसमें डाला है। पश्तो की न्यूज लेके आए हैं। इंशाल्लाह आगे आगे जैसे जैसे सूरत हाल चेंज होती है हम कोशिश करेंगे, जहां जहां हमारे कोरेस्पोंडेंट्स आते चले जाते हैं हम कोशिश करेंगे कि उन उस लैंग्वेज को हम अपने साथ प्रमोट करते चले। बेसिकली वी आर पाकिस्तानी, इंटरनेशनल लैंग्वेज, पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो हमारी उर्दू है, मगर कोर्स सूबाई लैंग्वेजेस को भी हम बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। आज के प्रोग्राम में मैंने जो लास्ट क्रूसेड का जिक्र है, और इसका जिक्र ऑफकोर्स कयामत का भी अगर हम जिक्र करते हैं तो कुरान पाक में जिक्र नहीं है, मगर अहदीस में इसका जिक्र जरूर मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी यानी आप कोई सही वक्त का तयन नहीं कर सके थे, तो थोड़ी सी मैंने इसके बारे में जो बैटल ऑफ आर्मगेडन है, इसका नाम है अल मुलहम्मातुल कुबरा या अल मुलहम्मातुल उज़्मा का जो जिक्र है वो मैंने भी आपके साथ थोड़ी देर में करना है। आज के प्रोग्राम में भी हम बीटी प्रॉपर्टीज, बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज इन दुबई का तस्करा करेंगे। ये 9 तारीख आज आप समझिएगा, टुडे इज थर्सडे एंड फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को इनका प्री लॉन्च है, और संडे 9 फरवरी को 2 बजे पूरी की पूरी टीम जो है, नईम मलिक जो है रियाज मलिक के भाई हैं, और हमारे कल एक कॉलर ने इस बात की तस्दीक की थी कि जी रियाज मलिक साहब तो सिर्फ सिंगल ब्रदर हैं, एक ही भाई हैं, जिसमें नईम मलिक साहब ने कहा नहीं, हम 11 भाई बहन थे जिसमें 4 बहनें और 3 बहनें और 8 भाई, एंड ही इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल। 4 की डेथ हुई है जिसमें एक शायद उनकी बहन और 3 भाई हैं। तो हिज ब्रदर नईम मलिक इस वक्त लीड कर रहे हैं जो नॉर्थ अमेरिका का प्रोजेक्ट है। आप देख भी सकते हैं बहरिया टाउन इन दुबई साउथ में ये प्रोजेक्ट है, उसके बारे में हम बात करेंगे आज, बिकॉज वी वॉन्ट एवरीबडी, प्लीज डू कम एंड ज्वाइन। आइए देखिएगा, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई लाजमी नहीं है, इसमें कौन कौन सी ऑप्शंस हैं उनके बारे में जानने के लिए। तो ये दुबई का प्रोजेक्ट है, प्री लॉन्च टोरंटो में संडे 9 फरवरी को मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर में ये प्रोग्राम होगा, और ग्रुप मलिक जो है वो इसको लीड कर रहा है। नईम मलिक साहब वहां जाती तौर पे मौजूद होंगे, तो आप आइए, इसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है। आज के प्रोग्राम में 6 बजे हमने आपकी एक मुलाकात करवानी है। नॉर्मली एवरी थर्सडे को हमारे साथ जनाब हुआ करते हैं, इम्तियाज गुल साहब हुआ करते हैं, बट टुनाइट ही हैड टू ट्रेवल टू लाहौर, और इसलिए उनसे हमारी आज बात ना हो पाई, मगर 6 बजे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जनाब साहब शाकिर साहब से, हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, जिसमें बात वही होगी कि पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है। आज की जो अगर हम न्यूज को देखते हैं तो आपको पता ही है कि जनाब हमारे जो मौलाना साहब हैं उन्होंने JUI के जो मौलाना साहब हैं थोड़े खफा थे और वो दोबारा मुलाकात करना चाह रहे थे, अपोजिशन पार्टीज के साथ मिल बैठना चाहते थे, मगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब उनकी रिहाइश गाह पे तशरीफ ले गए फूलों के साथ और यकीनन उनको मिलाया। जनाब अगेंस्ट नथिंग अगेंस्ट दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटिक्स एट द मोमेंट के आप प्रेशर्स बिल्ड करते हैं और फिर अपनी मर्जी के फैसले लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर हम इस वक्त दुनिया का रोल मॉडल अमेरिका के लिहाज से अगर बात करते हैं तो आप देखिएगा देयर वाज अ टाइम के पूरी दुनिया में कहा जाता था कि रॉयल्स या बादशाही निजाम को नापसंद किया जाता था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अहमियत दी जाती थी, जिसमें लोगों की हक के राय दही को एहतराम माना जाता था, ह्यूमन राइट्स की बात की जाती थी। मगर अब अमेरिका इटसेल्फ की ही अगर पॉलिसी बदल गई तो ऑफकोर्स बाकी तमाम की तमाम दुनिया ने तो इसको फॉलो करना है। तो आज के प्रोग्राम में यकीनन हम इन तमाम चीजों की बातें करते हुए आगे की तरफ चलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को आपको बताइए पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए थे। आज पाकिस्तान की एक कंपनी है जिसने बाकायदा ये गैर सरकारी कंपनी है, इसका नाम है पतन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है और उसके एनजीओज ने एक डेटा इकट्ठा किया है और इस उन्होंने किया है कि इलेक्शन जो हुए थे लास्ट ईयर इसमें तमाम के तमाम रिजल्ट्स को अल्टर किया गया। जब रिजल्ट्स आए तो शुरू में रिजल्ट्स आए, उसके बाद फिर डिले सिस्टम करना शुरू हो गया, फिर उसके बाद कुछ लोग जो जीते हुए थे उनको डिनाई करना शुरू कर दिया और फिर डिटेंशन का सिस्टम शुरू हुआ, तो पूरे के पूरे इलेक्शंस जो थे वो रिग्ड थे। इस हकीकत से किसी को एतराज भी नहीं है, बहुत से लोग इस बात को मानते भी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मतलब दिस इज अ ट्रू फैक्ट इन पाकिस्तान। ये जो पतन डेवलपमेंट है इसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अवामी मैंडेट की चोरी से मुतल्लिक तज्जिया और इसकी वजाहत की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आमरियत जोर पकड़ती चली जा रही है। जो आम इंतखाबात हुए थे लास्ट ईयर 8 फरवरी को उसमें बेमिसाल धांधली के बाद जो आईन है उसके ढांचे की रूह को मसख किया गया है। इसी हवाले से हमारी बात आज साबिर शाकिर साहब से भी होगी। आप 6 बजे इस प्रोग्राम को जरूर सुनिएगा। जाहिर है सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे आए, आप टेलीविजन देख सकेंगे, रेडियो पे सुन सकेंगे, आप हमारी वेबसाइट पे आकर सुन सकेंगे। इवन अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो उस दौरान आप 6478724900 का नंबर डायल करके भी इस प्रोग्राम को सुन सकेंगे जिसमें साबिर शाकिर साहब से गुफ्तगू होगी। ये पतन डेवलपमेंट जो है इन्होंने जो कहा है कि इंतहाई तश्वीशनाक रुझानात सामने आए हैं। इलेक्शन कमीशन 2024 में अपनी वेबसाइट पर इंतखाबी नतीजे के फॉर्म तब्दील करता रहा और मजे की बात यह है कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन नहीं बल्कि महीनों तक ये जो रिपोर्ट्स थी वो या उनके जो नंबर्स थे वो चेंज होते रहे। इसमें इंकशाफ ये भी किया गया कि ये रुझान पंजाब और कराची में ज्यादा पाया गया। बाय द वे जब मैं ये बात कर रही हूं पतन डेवलपमेंट की इस रिपोर्ट के बारे में बात कर रही हूं तो हमारे जमात इस्लामी के इस वक्त जो लीडर हैं हाफिज नईम साहब उन्होंने भी कहा है कि 8 फरवरी को यौम सियाह मनाएंगे। आप इमेजिन कीजिएगा पाकिस्तान की तमाम पोलिटिकल पार्टीज इस बात को रिकग्नाइज भी करेंगे बट अनफॉर्चुनेटली नोबडी हैज अथॉरिटी एंड पावर के वो गलत को अब गलत कह सके। जैसा मैं अभी प्रोग्राम के शुरू में कह रही थी कि वी ऑल फॉलो अमेरिका द फर्स्ट वर्ल्ड नेशन जो है और आप इमेजिन कीजिएगा कि वहां पर एक बात कहने के बाद दिनों में तब्दील होती है। आज ही जमाल साहब भी ये बात कर रहे थे कि डिट्रॉइट मिशिगन में आप आ जाइएगा। डिट्रॉइट मिशिगन की अगर हम बात करते हैं मिशिगन में डेमोक्रेट्स की अक्सरियत है और डेमोक्रेट्स ने हमेशा विन किया। इस दफा क्योंकि गजा का वाकया हुआ था और गजा के वाकये के बाद बहुत सारे अरब्स इन ममाली इन जगहों पे रहते हैं एंड दे रियलाइज के जो बाइडन के दौर में और कमला हैरिस ने जो अपना रोल प्ले किया था तो जो इलेक्शन जब हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप के वादे वईद जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं सीज फायर करवा दूंगा, दुनिया में कहीं जंग नहीं होगी, अमन होगी, उसके बाद डिट्रॉइट में जो रिजल्ट्स थे वो एस्टॉनिशिंग रिजल्ट्स थे।
100% अरफा जी, जब बाइडन साहब जब लास्ट टाइम उन्होंने दैट्स अ वेरी क्रिटिकल स्टेट स्विंग स्टेट किसको कहा जाता है ना, तो फिर यहां पर लास्ट टाइम बाइडेन साहब बड़ी वास्ट मेजोरिटी से ये जीते थे यहां पर, और इस दफा मुसलमानों ने ये सोचा कि नहीं, क्योंकि इसराइल की बड़ी फेवर करते हैं कमला हैरिस, तो इसलिए हम उनको वोट
देंगे। क्योंकि कमला हैरिस के हस्बैंड जो है ही इज ज्यूइश, और ये वॉर जब शुरू होती है ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गए, और उसमें ईंट से ईंट गजा की जैसे बजा दी गई, जिसको आप, मैं तो बल्कि कभी कभी कहती हूं कि इंसान की गलतियां, बाज़ुकात इंसान अपनी गलतियों को वो हाथों से दीवी गिरे दांतों से भी नहीं खुलती। कहां कि CNN जो था वो इस बारे में आवाज ही बुलंद नहीं कर रहा था कि गजा में किस कदर जुल्म हुआ, Nobody was saying, मगर डोनाल्ड ट्रंप की एक चीज ने CNN 2 दिन से इस चीज का जिक्र कर रहा है कि किस तरह से गजा की ईंट बचा दी गई और ना इंसाफी की गई। यस, ऑन वन साइड दे से कि इट्स अ फैक्ट के 7 अक्टूबर को जो वाकया हुआ था वो नहीं होना चाहिए था, और इसको आप बिल्कुल मुझे गलत कह सकते हैं, बट आई थिंक कि हमास ने लाख बॉर्डर की पाबंदियां होने के बाद 7 अक्टूबर को जाके अटैक करते हैं, उनके 250 से ज्यादा बंदों को यरगमाल बना के ले आते हैं, आनंद फानंद तूफान की तरह ये सारा कुछ होता है, और फिर उसके बाद 2 साल के बाद बेशुमार फैमिलियों ने अपने खानदान के खानदान 1,50,000 से ज्यादा लोग मरे, बेशुमार लोग डिस्प्लेस हुए। आप स्टीव वेटकिन की जब बात करते हैं जो इनके नुमाइंदे हैं डोनाल्ड ट्रंप के इन गजा, मजे की बात यह है कि इनके वजीर खारजा जो मार्को रूबियो हैं, मार्को रूबियो के पास मिडल ईस्ट की वो जगह नहीं दी गई। इट्स अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप जिनके जिम्मे वो है, और ये जो सीज फायर भी हुई थी इसमें स्टीव वेटकिन जो थे उन्होंने बेहतरीन रोल प्ले किया था, जिसका क्रेडिट जो बाइडन ने भी लेना चाहा कि जंग मैंने खत्म की थी। आपको याद होगा कि वो एक क्लिप बड़ा वायरल भी हुआ था, मगर उन्होंने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ गुड रियल्टर और उनको जगहों को आबाद करना आता है, और उन्होंने कहा कि मैंने जाती तौर पे विजिट किया गजा को, गजा का जितना स्ट्रक्चर है जितनी बिल्डिंग्स हैं इन बिल्कुल जमीन बोस हो चुकी हैं, और अगर कोई बिल्डिंग्स रह गई हैं तो वो इस काबिल नहीं कि वहां कोई भी रिहायश अख्तियार कर सके या कोई भी वहां पे, तो एक तरह का मलबे का ढेर है। मगर यस, बहुत से लोगों को तो वो रीसेटल करके और जगहों पे भेज देंगे, मगर बहुत से लोग जिनके पास वसाइल ही नहीं है, जरा ही नहीं है कहीं और जाके आबाद होने के पास, उनके पास पैसा ही नहीं है, उनकी 1948 से दे बीन ट्राइंग टू सेटल देमसेल्फ इन दैट एरिया, वो लोग किधर को जाएंगे। बहरहाल एक मुलाकात है जिसमें हमारे जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनकी इजिप्ट से और जॉर्डन से मुलाकात है, जिसमें ही इज ट्राइंग टू सेटल अराउंड 200,000 जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको इनके इलाकों में सेटल करने की, टू मिलियन लोगों को इन इलाकों में सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली आप देखिएगा ही विल मेक देम अंडरस्टैंड और इस पे रजामंद कर लेगा। अगर 2 मिलियन कहेगा तो कम से कम 1 मिलियन को तो जरूर सेटल कर ही देगा वहां पे।
पर डिपेंड करता है कि लोगों पे, कि अगर लोग कहेंगे भाई हमें नहीं जाना वहां पर, ये हमारी, हम रादर अभी ओपन,
अब यहाँ
ओपन स्काई में रहे,
ओपन स्काई में, वो कहते हैं कि वहां का स्ट्रक्चर ही बिल्कुल खत्म हो चुका है, ना वहां पानी है, ना
पहली दफा नहीं हुआ,
ना वहां पे तेल है, वहां पे कोई चीज भी नहीं है, और अगर कोई इमारतों के बीच में लोग रहता है तो वो इतनी हिल चुकी हुई है, अनसेफ है, वहां पे रहा नहीं जा सकता इसीलिए। और मजे की बात यह है, अमेरिकन आर्मी इसल ना भी हो मगर थर्ड पार्टीज के थ्रू अमेरिकन बेशुमार कंपनियां हैं जो वहां पे काम कर रही हैं इस मलबे को हटाने के लिए। मेक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के आज 2 साल के बाद अल्टीमेटली CNN इस बात को रिकॉग्नाइज करने के लिए ऊपर तैयार है, और उन्होंने इस बात पे स्टैंड भी लिया कि इसराइली फलस्तीनी हमेशा से इस इलाके में आबाद थे, आप कैसे उनको इस इलाके से बेदखल कर सकते हैं, ये तो एग्जैक्टली बुलिंग या गुंडागर्दी,
इंटरनेशनल लॉ नहीं है
इसको,
अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ। और फजी तो अब तो जितने भी टॉप मोस्ट लॉयर्स हैं एंड गुतरस जो यूनाइटेड नेशंस के हैं, उन्होंने सब ने कहा है कि दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ।
मगर माइजीवाल इंटरनेशनल लॉ के बाद क्या हुआ? आज आप देखिए कश्मीर की बात आप कर लें, इंटरनेशनल लॉ ने क्या कहा था? अगर आप पाकिस्तान के पानियों की बात कर लेते हैं तो इंटरनेशनल लॉ ने क्या कर लिया? ठीक है, उसमें यह था कि दरियाओं का पानी तकसीम किया गया था, मगर उस तकसीम के बावजूद गैर मुसावी तकसीम भी हुई, डैम्स भी बनाए गए। क्या कर लिया इंटरनेशनल लॉ ने? कुछ भी नहीं किया।
कुछ नहीं,
तो दैट्स व्हाट इट इज,
जिसकी भैंस उसकी लाठी।
एग्जैक्टली, तो
जिसकी लाठी उसकी भैंस,
उसका सारा कुछ ही है। यहां से मैं आपको पाकिस्तान की तरफ एक बार फिर से लेके जाऊंगी, लेकिन ये सारी बातचीत करेंगे। मैंने खास तौर पे जो लास्ट क्रूसेड है, बैटल ऑफ आर्मेगेडॉन, इसके बारे में थोड़ी सी बात मैं जरूर करना चाहूंगी। आज पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के हवाले से अपना जलसा करना चाह रही थी, मगर इन्होंने फिर अप्लाई किया, हालांकि इन्होंने अप्लाई किया 29 जनवरी को अप्लाई किया था, कोई आंसर नहीं था। अल्टीमेटली अदालत को इन्वॉल्व किया गया, अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को भी बुलवा लिया, कमिश्नर को भी बुलवा लिया, और भी बहुत से लोग जो थे, और उन्होंने कहा कि आज 5 बजे तक आप जवाब दें। अल्टीमेटली जनाब जवाब मिल गया, उन्होंने कहा है कि एक मेला मवेशियां भी हो रहा है और देर इज वन क्रिकेट टीम की भी अवेलेबल है, तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई जो पास्ट है वो इतना अच्छा नहीं है, 9 मई जैसे वाकयात हो सकते हैं, इसलिए तहरीक इंसाफ को यहां पर जलसे की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, खासतौर पर इस्लामाबाद में, क्रैकडाउन भी हो गया है कि पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं उनके अरेस्ट का सिस्टम भी शुरू हो गया है। और पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूं कि लाहौर इंतजामिया ने जलसे की इजाजत से इनकार कर दिया है। अगेन उन्होंने यही कहा है कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने 8 फरवरी को मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत देने की दरख्वास्त पर डिप्टी कमिश्नर को 5 बजे तक कहा था कि आपने जो भी करना है फैसला कर लीजिएगा, मगर अब उन्होंने ये कहा है कि नहीं, ये जलसा नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान लाहौर में ये 2 वाकयात हो रहे हैं जिसमें एक मेला मवेशियां और एक क्रिकेट का मैच हो रहा है, इस हवाले से ये नहीं होंगे। मैं यहां से कनाडा की अगर न्यूज को कवर करती हूं तो कनाडा में आज फिर एक और क्रैकडाउन हुआ है, उन्होंने बहुत सारी असला और सडबरी में पकड़ाया, दोनों हमारी कम्युनिटी से नहीं है, जिन दो लोगों को पकड़ाया थे आर फ्रॉम द अदर कम्युनिटी। अनरेस्ट की अगर बात करते हैं तो बांग्लादेश के हवाले से बात करना चाहूंगी। बांग्लादेश में जो हसीना शेख मुजीब है उनकी रिहाइश का, हसीना वाजिद उनकी रिहाइश का, इन तमाम चीजों पर लोगों ने धावा बोला, उसको जलाया, आग वगैरह लगाई। उन्होंने जो पैगाम दिया, उन्होंने कहा है कि इमारतें जलाने से तारीख को आप मिटा नहीं सकते, जिसमें बांग्लादेश ने हिंदुस्तान के जो एम्बेसडर हैं उनको बुला के कहा है कि हसीना वाजिद से कहें कि वो अपनी बयानबाजी से रुक जाएं या बाज आ जाएं। और यकीनन जैसे मैं आपके साथ के शेयर कर चुकी हूं कि बुध की रात को हजारों अफराद ने दारुलहुकूमत ढाका में एक रैली निकाली और मार्च किया और बुलडोजर्स प्रोसेशन का नाम इसको दिया गया था। शेख हसीना के वालिद बांग्लादेश की अलीहदगी की तहरीक के रहनुमा शेख मुजीबुर रहमान के घर को गिराना था, 1971 में पाकिस्तान से मुल्क की अलीहदगी का ऐलान किया था। जो मुश्तइल लोग थे उन्होंने शेख हसीना का अपनी जमात अवामी लीग पार्टी के हामियों से भारत से तकरीर करने का मंसूबा सामने आने के बाद उनके खिलाफ उन्होंने बयानबाजी भी की और मुजाहरीन 8 बजे के करीब जमा होना शुरू हुए और इमारत में घुसने से पहले मुजाहरीन ने कुछ लाठियां, हथौड़े, बेलचे और औजार वगैरह इन्होंने उठा रखे थे। और मुकामी मीडिया के मुताबिक अवामी हजूम की जानिब से अवामी लीग पर पाबंदी का भी मुतालबा मंजर आम पर आया और वजीर आजम शेख हसीना की ऑनलाइन तकरीर के बाद अवामी लीग के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया। ढाका ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है कि सोशल मीडिया पर मुतालबा किया गया था कि अगर शेख हसीना ऑनलाइन तकरीर करती हैं तो शेख मुजीबुर रहमान की जो रिहाइश का है उसकी तरफ बुलडोजर का जुलूस जो है वो जाएगा। बहरहाल 8 बजे के उन्होंने तकरीर की, 8 बजे के करीब ये कुछ हुआ, शेख हसीना ने ये लफ्ज कहा कि आप इमारतें गिराने से तारीख को मिटा नहीं सकते। बहरहाल अब लेट्स सी कि हाउ थिंग्स वर्क ऑनवर्ड। یہاں سے ہم آپ کو لے کر کے جانا چاہتے ہیں اونٹیریو کی طرف. جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ 2,00,000 مالیت کے منشیات کو پکڑا گیا ہے. 2 ٹورنٹو ریزیڈنٹس ہیں جن کے اوپر اراؤنڈ 43 کے قریب چارجز ہیں. یہ سڈبری کے علاقے میں یہ ریٹ ہوئی ہے اور ایک لحاظ سے بہت اچھا. دیکھیے صاحب, چھوٹی آرگنائزیشنز جس چیز کو سفر کر رہی ہیں, یہ وہی چھوٹی آرگنائزیشنز کو, اسمال آرگنائزیشنز کو ہی معلوم ہے. آپ امیجن کیجئے گا کہ کینیڈا پوسٹ جو ہے وہ تقریباً 50 امپلائیز, انہوں نے کہا ہے کہ کرٹیکل فائنینشیل سچویشن کی وجہ سے ہم اب یہاں پر. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شاید یونین میں نہیں ہیں, یہ ہائی رینکڈ آفیسرز ہیں, مینیجرز ہیں, جو کہ جن کی تنخواہیں بھی بہت زیادہ ہیں اور جو باقی جو منافع ہیں ان میں بھی حصہ لیتے ہیں, ان لوگوں کو لے آف کیا جاتا ہے. 50 مینجمنٹل امپلائیز جو ہیں ان کو فارغ کیا جا رہا ہے. اور جو کینیڈا پوسٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں 313 ملین کے لاسز ہوئے اور آنے والے سالوں میں یہ لاسز اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہوں گی. جو کینیڈین یونین ہے پوسٹل ورکرز کی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ وہ سارے کے سارے بڑے ہیں جو کہ شیئرز بھی ہر چیز میں لیتے ہیں, منافع میں بھی شیئر لیتے ہیں, اور اگر یہ ہوا ہے تو بالکل صحیح ہوا ہے.
اور ان کی وجہ سے عارفہ جی, وہ جو آرڈنری ورکرز ہیں وہاں پر جن کی یونین کی وجہ سے یہ بات چیت کر رہے ہیں اپنے کانٹریکٹ کے لیے, وہ بھی پورا انہی کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 20% آف مینجمنٹ کو انہوں نے آلریڈی جنوری میں نکالا تھا اور اب جو ہے یہ بقیہ کے 50 سے زیادہ لوگ اب نکالے جا رہے ہیں.
بہت شکریہ. اس وقت ایک ملاقات کی طرف لے کر کے جانا چاہتی ہوں. میں ایک بات, ہم نے کل سٹیٹسٹکس آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے, گھروں کی قیمتیں بائی دا اینڈ آف 2025 ڈیفینیٹلی 2.5% تک انکریز ہونے کا پیش خیمہ ہے. یہاں سے اس کے بعد پھر یقیناً گھروں کی سیچویشن کے بعد لوگ مڑیں گے ٹورڈز دی اپارٹمنٹس ایز ویل. تو اگر کانڈوز اپارٹمنٹس کانڈوز کی طرف بڑھیں گے, بٹ ایٹ دا مومنٹ آف کورس کانڈوز کی مارکیٹ جو ہے اس میں کوئی خاص ہل جل نہیں پائی جا رہی. ظاہر ہے کینیڈا میں الیکشن پروونس کے ساتھ ساتھ ہمارے فیڈرل کے الیکشنز بھی آگے آگے منتظر ہیں, اور ہر گورنمنٹ, ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ہاؤسنگ کرائسس کو محسوس بھی کر رہی ہے اور اس کی حدت اور شدت کو بھی محسوس کر رہی ہے. اگر آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں تو پری پلاننگ, ہر چیز کی پلاننگ, روٹ میپ کی ضرورت ہوتی ہے. میں آپ کو شیراز شفیق کا نمبر دیتی ہوں. آئی نو ہم فار کم از کم 7-8 سال سے, آئی نو ہم سنس ہی اسٹارٹڈ اکال مارگیجز کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, اور آپ اپنے پورے پیپرز آن ٹائم ان کو پرووائڈ کیجئے گا. بالکل بیٹھ کے ان سے بات کریں, آپ بھی اپنے نوٹس لیں, سو دیٹ ٹورڈز دا اینڈ نہ آپ کی سلیپلیس نائٹس ہوں اور نہ کوئی اور پریشانی کا معاملہ ہو. شیراز شفیق مارگیجز کو ڈیل کرتے ہیں. آپ نے پرچیز کے لیے مارگیج چاہیے, یا اگر آپ اپنے گھر کو ری فائنینس کرانا چاہتے ہیں, یا اگر آپ کی دوبارہ مارگیج کا رینیول آ گیا ہے, تو ٹاک ٹو ہم نا, ہی کین گیٹ یو گڈ یو نو بینکس وغیرہ سے ڈیل کروا سکتے ہیں. اگر آپ لائن آف کریڈٹ لینا چاہتے ہیں, یا اگر آپ کنسٹرکشن کے لیے لونز چاہتے ہیں, تو شیراز شفیق کے نام کو یاد رکھیے گا, 2892426286 242 6286 ایریا کوڈ 289. یا آپ ہماری ویب سائٹ پہ آئے تو شیراز شفیق کا نمبر آپ کو ہر لمحے www.eawaz.com پہ مل سکتا ہے. جی ماجد,
اور عارفہ جی شیراز ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. شیراز, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجید بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, آپ کا ٹھیک ہے
الحمد للہ. شیراز شفیق ہے, نکال مارگیجز کے بارے میں کچھ بتائیے گا.
جی مجید بھائی, مجید بھائی ہم لوگ اکال مارگیج والے جو ہیں وہ بیسکلی پچھلے 20-22 سال سے مارگیج انڈسٹری کے اندر سولوشن بیس سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. کسی بھی قسم کی سچویشن ہو, اکال مارگیج اپنے نام اور کام دونوں کی وجہ سے جانی جاتی ہے. आपको किसी भी किस्म की मॉर्गेज चाहिए, चाहे आप कोई रेजिडेंशियल मॉर्गेज देख रहे हैं या कोई कमर्शियल मॉर्गेज देख रहे हैं, या किसी किसी किस्म की कोई लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए, होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए, या आपको कोई प्लान बन रहा है जी, आप कोई फ्रेंचाइज बाय करना चाह रहे हैं या कोई एग्रीमेंट बाय करना चाह रहे हैं, इन सब चीजों के लिए अगर आपको कोई लोन वगैरह चाहिए तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लें जी, शिराज शफी का कॉल मॉर्गेज 416-502-8000-416-502-8000।
शिराज, जिस टॉपिक पर आज हम आपसे बात करना चाह रहे हैं वो है रिन्यूअल्स विथ बी लेंडर्स। कुछ बी लेंडर्स के बारे में बताइए और बताइए कि इससे आप ए लेंडर्स से करा के देते हैं या बी लेंडर्स से।
माजिद भाई, बी लेंडर्स बेसिकली क्रेडिट यूनियन कंपनीज, छोटे बैंक भी जिनको हम लोग कहते हैं। बेसिकली हम लोग जब भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि बी लेंडर पे जाते क्यों है, रीजन ये होते हैं माजिद भाई, जब भी हम लोग बी लेंडर से लेके देते हैं तो क्लाइंट की सिचुएशन के हिसाब से, कि किसी भी वजह से अगर हमारे बहन भाई ट्रेडिशनल लेंडर के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते, चाहे उनको कोई इनकम की प्रॉब्लम होती है या उनका कोई क्रेडिट स्कोर ठीक नहीं होता या उन्होंने कोई पास में बैंकरप्सी की होती है, तो बी लेंडर बेसिकली फ्लेक्सिबल है उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने में। अगर उनका क्रेडिट स्कोर कम है, वो ए लेंडर पे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे तो बी लेंडर पे क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर उनकी इनकम कम है तो फिर भी बी लेंडर, क्योंकि वक्ती तौर पर हम लोग उनको जो ना सर्विसेज लेके देते हैं उनकी सिचुएशन के हिसाब से। होता ये है माजिद भाई के जितनी एफर्ट हमारे बहन भाई मॉर्गेज देने के लिए करते हैं ना, जब इनकी रिन्यूअल आती है ये इतनी एफर्ट नहीं करते। क्यों? देखो, जब हम लोगों ने आपको बी लेंडर से मॉर्गेज लेके दी है वो आपकी इस वक्त की मौजूदा करंट सिचुएशन के हिसाब से है। अगर आप उसी मॉर्गेज को रिन्यू करते जाओगे तो होगा क्या कि बी लेंडर का जो इंटरेस्ट रेट है वो एज कम्पेयर टू ए लेंडर ज्यादा होता है, आपके ज्यादा पैसे इंटरेस्ट में जाएंगे, आपका प्रिंसिपल पे नहीं होता, आप सारे के सारे पैसे जाया करते जाओगे। इसमें होता क्या है माजिद भाई, हमारे बहन भाई के करते क्या है, जो इनको लेटर आता है ना ये उसी को साइन करके भेज देते हैं या ये खुद ही लैंडर्स को कॉल करना शुरू कर देते हैं। ये कोई इतना अच्छा तरीका नहीं है, मैंने आपको अभी वजह बताई है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। और दूसरी बात यह है कि हमारे बहुत सारे जो बहन भाई हैं उन्होंने दो मॉर्गेजें, एक 10% के पास पड़ा होता है, 10% उन्होंने प्राइवेट से उठाया होता है, 20% करके तो मॉर्गेज फिर भी बी लैंडर से ली होती है। माजिद भाई, बहुत सारे केसेस के अंदर हम लोग इन दोनों मॉर्गेजों को कंसोलिडेट करके एक मॉर्गेज भी कर सकते हैं, और अगर हमारे बहन भाई फर्दर क्वालिफाई करते हैं तो उनकी इस मॉर्गेज को उठा के हम लोग ए लेंडर से करवा के दे सकते हैं। हमने बहुत सारे केसेस में करके दिए है, आप अपने बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हो इंटरेस्ट रेट की शक्ल में, लेकिन अगर किसी भी वजह से आपको मूव करने का फायदा नहीं ना होता तो हम लोग खुद ही आपसे कहते हैं कि आप जिस लेंडर के पास बैठे हुए हैं यहीं पे रहें, हम कोशिश करते हैं इसी लेंडर से आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट लेके दें। ये नहीं करेंगे कि आप पहले बी लेंडर में बैठे हुए हैं आपको मूव करने का फायदा नहीं हो रहा तो हम लोग अपनी फीस बनाने के लिए आपको एक बी लेंडर से उठाएं और दूसरे बी लेंडर पे जो ना सक कर दें, ऐसे नहीं है। देखो, आपको बी लेंडर पे हमने जो लेके गए हैं तो वक्ती तौर पे सिर्फ आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज पूरी की हैं, ताकि वक्ती तौर पे आपकी मॉर्गेज हो जाए, आपको प्रॉब्लम ना आए, आपको प्राइवेट पे ना जाना पड़े। तो अगर आप उसी पे बैठे रहेंगे तो कल को आपको घर को रिफाइनेंस करना पड़ जाए तो उसके अंदर तो इक्विटी नहीं पड़ी होगी, क्योंकि आपको प्रिंसिपल ही पे नहीं हुआ। जिस तरह से अब ये सिचुएशन चल रही है कि घरों की प्राइसेस थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है, अगर हमारे बहन भाई जो कि बी लेंडर्स पे थे वक्त पे अपनी मॉर्गेज को ए लेंडर पे मूव कर चुके होते तो ऑब्वियसली वहां पे उनका प्रिंसिपल ज्यादा पे होना था, तो इस वक्त तो उनके घरों के अंदर इक्विटी ज्यादा होनी थी, तो उन्होंने इजीली उस इक्विटी को टेकआउट करके अपने जो डेट है उनको कंसोलिडेट कर लेना था, या जो हमारे बहन भाई जिनकी अनफिनिश बेसमेंट है उन्होंने अपनी बेसमेंट को फिनिश कर लेना था तो उसको रेंट आउट करके एक अच्छा सा जो अल्टरनेट जो कैश फ्लो है ना वो हासिल कर लेना था। अब जब वो इंटरेस्ट रेट ही हाई पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके पास बच भी कुछ नहीं रहा और उनका प्रिंसिपल पे नहीं हो रहा, तो वहीं के वहीं स्टक है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों की रिन्यूअल आ रही है या आप लोगों ने कोई सेकंड मॉर्गेज उठाई हुई है प्राइवेट से और आप उसको कंसोलिडेट करवाना चाह रहे हो या अपने डेट को कंसोलिडेट करवाना चाह रहे हो, तो रिन्यूअल से पहले एक मरतबा कॉल कर लो, अपनी ऑप्शंस को डिस्कस कर लो, ताकि आपको पता चल सके कि आपके पास कौन कौन सी ऑप्शन मौजूद है। हम लोग गाइड करने के किसी किस्म की कोई चार्जेस नहीं चार्ज करते, कंप्लीट ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, आगे आपकी अपनी मर्जी होती है, क्लाइंट की अपनी मर्जी होती है कि उन्होंने क्या डिसाइड करना है, किस ऑप्शन के साथ जाना है। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल कर सकते हैं जी, नंबर नोट कर लो, शिराज शफी का कॉल मॉर्गेज 416-502-8000-416-502-8000-416-502-8000।
शिराज शफीक का टेलीफोन नंबर है अकाल मॉर्गेजेस अमनसरी के, कोई भी सवाल हो इट कम्स टू मॉर्गेजेस प्लीज गिव हिम अ कॉल 416-502-8000। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
थैंक यू माजिद भाई, और याद रखेंगे अगर हम लोगों ने आपकी फाइल को रिव्यू करके एक वक्त आपको ओके कह दिया हम हमेशा अपने वादे पे पूरा उतरते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज
साहब, बहुत शुक्रिया हमारे उन स्पॉन्सर्स का जो प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करने में हमारी मदद करते हैं। अभी आपने शिराज शफीक का जिक्र सुना, मैं जिक्र करना चाहती हूँ चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल का। ऐसे ग्रुप ऑफ हॉल्स हैं, इनके इंडोर आउटडोर इवेंट्स हैं, ओपन कॉन्सेप्ट भी है, 28 ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस है। आप राब्ता कीजिए www.chandnivictoria.ca जिसमें आप अपनी सहूलत के मुताबिक कोई भी हॉल देख सकते हैं। यहाँ पे चांदनी विक्टोरिया है, कैलेडन कंट्री क्लब है, चांदनी हॉल्स हैं, चांदनी केटरिंग है, इंडोर आउटडोर गोल्फ फैसिलिटीज हैं। तो जरूर आप चांदनी विक्टोरिया पे एक दफा देखिए जरूर आउटडोर प्रोग्राम्स के लिए। ये जो इनके गोल्फ कोर्सेज हैं दोज आर ब्यूटिफुल। यहां से हम जिक्र करना चाहते हैं डॉक्टर अंकुश गोयल का भी, और डॉक्टर अंकुश गोयल वन ऑफ द थ्री बेस्ट डॉक्टर्स इन ब्रैम्पटन नॉन सर्जिकल कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के लिए, यानी टू लुक यंगर की अगर हम बात करते हैं, रिंकल्स हैं अगर आपके चेहरे के ऊपर झुरियां हैं छाइयां हैं तो उसके इलाज के लिए फेसलिफ्ट करना है, या अगर आपने अपनी रिंकल्स को खत्म करना है तो आप राब्ता कीजिए। अगर आपके बाल बहुत गिरते हैं तो PRP का प्रोसीजर बहुत बेहतरीन प्रोसीजर है, आप इसको एक दफा ट्राई जरूर करें, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अंकुश वन ऑफ द टॉप थ्री डॉक्टर्स इन ब्रैम्पटन, अर्जेंट केयर वॉक इन क्लिनिक, एंड नाउ कॉस्मेटिक जरूरियात के लिए आप उनसे राब्ता कर सकते हैं, मर्दों और ख्वातीन दोनों के लिए 4377578191 उनका नंबर है। यहां से मैं आज एक और चीज, अब माजी भाई थोड़ा सा आप मुझे आपकी जरूरत होगी क्योंकि जाहिर है कुरान पाक का मुताला आपने भी बहुत किया है और आपका मुताला तो एडिशनल है, आपने अहदीस का मुताला भी बहुत ज्यादा किया। आज मैं दो चीजों का जिक्र करना चाह रही थी, एक तो उन कौमों का जिक्र करेंगे हम, हजरत नूह का जब हम जिक्र करते हैं कुरान पाक में हजरत नूह का जिक्र है भी, हजरत नूह के तीन बेटों का जिक्र करेंगे, ये तीनों बेटे दुनिया के किस किस हिस्से में आबाद हुए, और हाम साम और याफिज या याफिस के नाम से उनका जिक्र करेंगे। तो बहरहाल क्योंकि इस वक्त जुबान ज़दे आम है इसराइल की के मामले और गजा का वाक़या, अमेरिका की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, और खलीज मैक्सिको को खलीज अमेरिका करने के बाद अब वो ग्रीनलैंड भी लेना चाहते हैं, वो गजा की स्ट्रिप में भी अमेरिका को जाके बसाना चाहते हैं, कैनेडा को भी वो 51 स्टेट बनाना चाहते हैं। मगर अगर हम अमेरिका में भी देखें तो बुलिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि एलन मस्क जिस पोजीशन के ऊपर काम कर रहे हैं और व्हाइट हाउस में आने के बाद किस तरह से कांग्रेसमैन अहाता करते हैं सो दैट द पर्सन कैन बी होल्ड अकाउंटेबल। ये नहीं है कि मैंने अपनी मर्जी से उसको अपॉइंट किया और चार दिन के बाद वो वहां से निकल जाए और पूरे के पूरे मुल्क का सिस्टम जो है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस उसकी कोई भी ना हो। ठीक, तो बहरहाल मैं जब बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं तो इसको आप मेरी एक अंदाजा भी समझ सकते हैं, मगर जाहिर है कुरान और हदीस के हवाले से ही हम चीज को देखते हैं और फिर हम एनालाइज करते हैं। हमने कल भी जिक्र किया था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र किया था, इनके पास बादशाहत नहीं थी, इनके पास कुछ भी नहीं था, फिर ये बादशाह बन जाते हैं क्योंकि तालूत के जमाने में तालूत बादशाह था, ये उसके एक जर्नैल थे, इन्होंने एक जो फलस्तीनी था उसके साथ मुकाबला किया था और उसके बाद तालूत जो था वो इनसे खुश होता है, इनको यहूदियों ने बहुत पसंद भी किया, इनको फिर उसके बाद तालूत बादशाह अपनी बेटी की शादी भी कर देता है इनसे, जिसके नतीजे में फिर इनको फिर बादशाहत भी मिल जाती है। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बच्चों में से हजरत सुलेमान तशरीफ ले आते हैं जिसका फिर कुरान पाक में इनका तर्जुमा हजरत सुलेमान का के तमाम जुबानों से वाकिफ थे, हवाओं के ऊपर आपका इख्तियार था, हजरत सुलेमान के तख्त का जिक्र करते हैं। अब तारीख हमें जो बताती है हजरत दाऊद ने اسرائیل پر تقریباً 40 سال تک حکومت کی تھی. حضرت سلیمان نے قرآن پاک میں ان کا ذکر آپ کو بتائیے کتنی بار آیا, پوری کی پوری ایک سورہ کے بیچ میں اس کا تذکرہ بھی ہے. اسرائیلی روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں 7 سال لگے, اور یہ ہیکل سلیمانی جو تھا یہ حضرت سلیمان کے دور میں مکمل ہوا تھا. اس کی تعمیر کے بعد ہیکل سلیمانی 40 سال تک اپنی جگہ پر موجود رہا تھا. حضرت سلیمان کا جب انتقال ہوتا ہے یا جب مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی اسی میں ہی یہ ایک ٹیک لگا کے عصا پہ کھڑے تھے جن اس کی تعمیر کر رہے تھے, اور اس عصا کو قرآن پاک میں یہ واقعہ دیا بھی ہوا ہے, اسی عصا کو پھر دیمک لگ جاتی ہے اور جنوں کو اس بارے میں علم بھی نہیں ہوتا اور پھر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. بہرحال 40 سال تک یہ جو ہیکل سلیمانی ہے یہ اپنی جگہ پر موجود رہا. حضرت سلیمان کے بعد جب حضرت سلیمان کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہود میں آپس میں لڑائی ہو گئی اور یہود کی 2 ریاستیں بن گئی تھی, شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم ہو گئی تھی. یہ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 میں درج ہے کہ دونوں سلطنتوں میں خون ریزی ہوئی, اور 7ویں صدی عیسوی میں جو ہاشمی فاتحین تھے انہوں نے ان کا خاتمہ کر دیا تھا. سائرس, اب ہیکل سلیمانی گر جاتا ہے, سائرس اعظم نے جناب ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کروایا تھا اور یہاں پر آ کے یہود کو دوبارہ آباد کیا تھا. بخت نصر کی تباہی کے بعد اب وہ تابوت سکینہ بھی وہاں پہ موجود تھا, پہلے سیکنڈ ٹائم پہ جب یہ تباہ ہوتا ہے تو تابوت سکینہ بھی وہاں سے غائب ہو جاتا ہے. اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں باقاعدہ موجود ہے, تالوت کے واقعے میں, ان کی فوجوں کے واقعے میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. یہ محل جو دوبارہ سائرس اعظم نے بنایا تھا, ایک رومنز کی یہود کے ساتھ بڑی خنس رہی اور رومن بادشاہ تھا ٹائٹس, اس نے اس ہیکل سلیمانی کو دوسری دفعہ زمین بوس کر دیا, ٹھیک ہے, تباہ ہو گیا. اور سن جو بیفور دا کرائسٹ, سن آفٹر دا کرائسٹ, سن 36 میں یہود نے ایک دفعہ رومنز کے اگینسٹ بغاوت کرنے کی کوشش کی, جس کا میں نے کل بھی تذکرہ کیا تھا کہ رومنز نے اس کے بعد یہود کو گن گن کے سزا دی کہ یہ لوگ چھپ کے زندگی گزارتے تھے, ان کو ایمفی تھیٹر میں زندہ حالت میں جانوروں کے آگے, وحشی درندوں کے آگے ڈال دیا جاتا تھا. بہرحال اب خیال کیا جاتا ہے کہ تابوت سکینہ وہاں سے نکل گیا تھا, اور اس کے بعد نکلنے کے بعد بہت سے لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ تابوت سکینہ اس وقت اردن کی جبل نیبو کے غاروں میں موجود ہے. اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے, اس کا ذکر انجیل میں بھی موجود ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تابوت سکینہ جو ہے ایتھوپیا میں ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ بہت سارے جوش جو تھے, حضرت ابراہیم کی اولاد کے بہت سے لوگ جو تھے وہ جا کے افریقہ کی سائٹ پہ بھی آباد ہو گئے تھے. بہرحال حضرت سلیمان کی اس مسجد کی تعمیر جو 100 قبل مسیح میں بنائی گئی تھی, بیفور دا کرائسٹ یہ مسجد تعمیر کی گئی تھی, ہیکل سلیمانی جس کو نام دیا جاتا ہے, دوبارہ بنائی گئی 70 عیسوی میں, پھر اس کو گرایا گیا, اور آج کے دور میں وہاں پر صرف دیواریں گریا موجود ہے جس کے سامنے یہودی جو ہیں وہ عبادت کرتے ہیں. ڈومو فراک یہ جو مسجد اقصی ہے یہ دوسری سائیڈ ہے, اسی جگہ پہ مسجد بھی ہے, اسی جگہ پہ دیواریں گریا بھی ہے, اور یہیں پہ چرچ بھی ہے. کرسچنز, مسلمان اور یہودی, یہ تینوں کے لیے ایکول امپورٹنس کی جگہ ہے. اور مجھے بڑی حیرت ہے کہ دس از اے ٹائم کے کرسچنز اینڈ جوئس جو ہیں وہ ایک سائٹ پہ ہوئے ہوئے ہیں, حالانکہ کرسچینٹی اور جوئزم کے بیچ میں, جوئش کمیونٹی کے بیچ میں جو سب سے بڑا جھگڑا تھا کہ وہ وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے تو اس وقت یہودیوں کے پاس سب سے زیادہ کاروبار تھا اور یہ کاروبار سود کا کاروبار کرتے تھے. دے ور ویری رچ پیپل, ایکسٹریملی رچ پیپل. اور عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لے کے جانے کی ون آف دا ریزن اس وقت کے وہ جو امیر ترین لوگ طاقت میں تھے ان کی وجہ سے وہ ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد یہود کا اور کرسچنز کے درمیان آپس میں بڑا جھگڑا بھی رہا. بہرحال اب یہاں پر ہم نے حضرت داؤد کا ذکر کیا, حضرت سلیمان کا ذکر کیا. حضرت سلیمان کے تخت کا ذکر کرنا چاہتی ہوں, تخت سلیمان کا ذکر کرنا چاہتی ہوں. حضرت داؤد کا تخت, کیونکہ دائرہ تالوت کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی اور ان کو بادشاہت بھی ملتی ہے. یہ وحد پیغمبر تھے جو بادشاہ بھی تھے اور جو پیغمبر بھی تھے, اور یہ جوش یہود کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے آ رہے تھے. حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہی تھے, حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے یہ آ جاتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جو حضرت داؤد کا تخت ہے آج کے دور میں دس از ان ویسٹ منسٹر لنڈن میں یہ موجود ہے, مگر یہ وہاں سے نکلا تھا اور پہلے حضرت سلیمان نے جب یہ بنائی تھی, مسجد بنائی تھی, تو وہاں پر اس حضرت داؤد کے تخت کو رکھا گیا تھا. مسجد ایک بار مسمار کرائی گئی, یہ ہیکل سلیمانی دوسری بار مسمار کرایا گیا, تو اس کے بعد یہ جو تخت تھا تخت داؤد اس کو یہاں سے نکال دیا گیا. کہتے ہیں کہ 70 قبل مسیح میں, بفور دا کرائسٹ, 70 بفور کرائسٹ میں جب مسجد گرائی گئی, تو یہ جو حضرت داؤد کا تخت تھا اور چند جو پتھر تھے وہ وہاں سے نکال لیے گئے. پہلے ان کو روم لے کے جایا گیا, روم سے ان کو آئرلینڈ منتقل کیا گیا, آئرلینڈ سے ان کو اسکاٹ لینڈ منتقل کیا گیا, اسکاٹ لینڈ سے ناؤ اڈیز دس از ان انگلینڈ, اور ویسٹ منسٹر میں حضرت داؤد کا یہ تخت موجود ہے. اور مختلف جو ہمارے جیوش پیغمبر تھے ان کی, یا بادشاہ تھے ان کی جو تاج پوشی تھی وہ اسی تخت پہ ہوئی تھی. بہرحال کہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جب ہیکل سلیمانی جب دوبارہ بنا دیا جائے گا اور جہاں دیواریں گریا ہے, تو اس تخت کو وہاں لے کے جایا جائے گا. ایک چیز میں جس کو دیکھ رہی تھی کہ مجھے نہیں پتا کہ کہاں تک ہے, میں نے ڈاکٹر اسرار کو بڑے قریب سے سنا بھی ہے, میں آج بھی سنتی ہوں, میں ان کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتی ہوں. آپ بھی دیکھیے گا دا لاسٹ کروسیڈ, بیٹل آف آرمگیڈون کے بارے میں آپ ضرور پڑھیے گا, ضرور دیکھیے گا. ڈاکٹر اسرار احمد کو بھی سننے کی کوشش کیجیے گا. یہ وہ جنگ ہے جس کا بائبل میں بھی ذکر ہے اور یقیناً ہمارے بھی بہت سارے مفکرین اس کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بیٹل آف آرمگیڈون, یا جس کو الملہمات الکبریٰ کا جنگ, یعنی سب سے بڑی جنگ کا نام دیا جائے گا, اس میں اربوں کا بہت نقصان ہوگا. آج میں ابھی ایک پچھلے دنوں میں ایک نقشہ پیش کیا تھا بنجمن نتن یاہو نے, میں اس کو جب دیکھتی ہوں مجھے بہت حد تک پورا نظر آتا ہے. کہتے ہیں عراق, شام, اردن, سعودی عرب کا شمالی علاقہ, ترکی کا جنوبی علاقہ, مصر کا صحرائے سینا, ڈیلٹا فرائی مصر کا, یہ تمام کا تمام علاقہ جو ہے یہ اسرائیل میں چلا جائے گا, نیو میپ ہوگا. اور یہ دیکھیں, یہ دے آر گوئنگ اکارڈنگ ٹو دیئر ریلیجن. میں اب یہ کہتی ہوں کہ اگر قرآن میں یا احادیث میں ہمیں یہ چیزیں ملی ہیں تو ہم کتنا ان کے اگینسٹ سٹینڈ لے سکتے ہیں. آئی مائٹ بی رانگ بٹ دس از واٹ آئی تھنک. تو وہ کہتے ہیں یہ تمام کا تمام علاقہ اسرائیل کے قبضے میں چلا جائے گا. حدیث میں قیامت کا کوئی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا, مگر یہ جو لاسٹ کروسیڈ ہے, یعنی الملہمات العظمیٰ کا ذکر ضرور حدیث میں ہے. کہتے ہیں کہ اس میں اتنا نقصان ہوگا, اتنی اموات ہوگی کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے ہیں تو 100 میں سے 99 بیٹے جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, तो अगर आप अभी कुछ दिनों पहले 4-6 महीने पीछे चले जाएं, जब हमारी यूनाइटेड नेशन में आपको याद ही होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जो नक्शा दिखाया था, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग कि कौन कौन से मुल्क हैं, इराक, शाम, उर्दन, सऊदी अरब का शुमाली इलाका, आज तो सऊदी अरेबिया। और मुझे याद है मैंने बारहा इस बारे में कहा कि आज अगर उर्दन, शाम या गजा की तबाही है तो मदीना पाक में बेशुमार उस वक्त के अमीर तरीन यहूदी मौजूद थे, उनके कारोबार, उनकी प्रेजेंस वहां पे मौजूद थी। तो दिस विल नॉट बी लेफ्ट अलोन। एक और चीज मैं देख रही थी, और अगेन अहादीस की रोशनी में ही मैं इसके बारे में भी बात करती चली चलूं तो बेहतर होगा। माजी भाई कहते हैं कि हजरत आदम के जमाने, माइग्रेशंस की हम बात करते हैं, हजरत आदम के जमाने में पहली माइग्रेशन हुई थी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में, और एबोरिजिनल्स इसमें मिलते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, हजरत आदम की औलाद में से ही आगे लोग आके मिलते हैं। हजरत नूह की कौम पर अजाब आया था और तूफान के जरिए हजरत नूह की पूरी कौम को तबाह कर दिया था। हजरत नूह के 3 बेटे थे, एक का नाम था हाम, एक का नाम था साम और एक का नाम था याफिस, या याफिज का नाम आप दे सकते हैं। अब ये हजरत नूह के 3 बेटे हैं। हाम जो बेटा था वो उसकी औलाद ने अफ्रीका की तरफ फैली हुई है। अगर मैं अब आपको, बहुत से लोग जो शायद नहीं बिलीव करते, आप सोचेंगे अगर आप सूरत यूसुफ की तरफ अगर चले जाएं, सर यूसुफ की तरफ चले जाएं, कि उनके सुतेले भाई थे बिन्यामीन और ये जो थे हजरत यूसुफ जो थे ये 2 सगे भाई थे, दूसरी मां से थे, और फिर ये लोग अफ्रीका की तरफ ये तमाम के तमाम आबाद हुए थे जाके। हाम की औलाद जो थी ये अफ्रीका में पहली तजीमें हाम नस्ल से अफ्रीका में नमूदार हुई थी। साम अगेन हजरत नूह के बेटे, दूसरा बेटा है, ज्यादातर मशरिक वुस्ता में आबाद हुई, और साम ये हजरत नूह के दूसरे बेटे थे। तीसरा बेटा याफिस या याफिज का अगर हम नाम देते हैं, ये लोग वो हैं जो वस्त एशिया में, मॉस्को में, बांसिक में आबाद हुए। याफिस के आगे हजरत नू के याफिस से 10-11 बच्चे थे। दिस इज द फैमिली ट्री ऑफ हजरत नू। अगर आप देखें तो याफिस की औलाद में ना याफिस के तकरीबन 10-11 बेटे थे। इनमें से 2 का नाम गूग मागूग था। गूग मागूग भी कह सकते हैं आप, ये देखिए ना, साम, हाम, याफिस और याम, मगर हम 3 का जिक्र कर रहे हैं, साम, हाम और याफिस का हम जिक्र कर रहे हैं। याफिस के आगे जो बेटे, 2 बेटे थे, एक का नाम, 11 बेटे थे मगर 11 में से 2 का नाम जो था वो था गूग मागूग, जिसको आप गूग मागूग भी कह सकते हैं, जिनको आप जूज माजूज भी कह सकते हैं। अब आज ये बड़ी अजीब सी बात है, दुनिया की सुपर पावर इस वक्त कौन है? अमेरिका। व्हाट इज द अपकमिंग फोर्स?
चाइना।
मैं रात अपने बेटे से जब इसी चीज को डिस्कस कर रही थी तो वो मुझे कहने लगा था, मामा यू नो व्हाट, जब मंगोल्स आए थे तब भी लोगों ने ये कहा था ये जूज माजूज आ गए, हर तरफ से मंगोल, आपको तो उबल उबल पड़ रहे थे। बट दैट वॉज द बिगनिंग, आज अगर मैं
जिस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है ना आरफा जी, तो वो बड़ी तहकीकात के बाद वही चाइना का इलाका और चाइनीज।
अब वही तो मैं, ये जो याफिस की औलाद है ये वस्त एशिया, मास्को और बांसिक वगैरह में आबाद हुई थी। इनमें से इनके याफिस के 2 बेटों का नाम गूग मागूग था या जूज माजूज आप कह सकते हैं। इसके 1 बेटे का नाम याबान था, जिसके नाम से जापान का मुल्क है। नूह के ये पोते, 3 पोतों का मैंने इस वक्त जिक्र किया है, कहते हैं कि ये नूह के पोते हिजरत के बाद यूरोप गए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आर्याओं की सूरत में ये हिंदुस्तान भी गए थे। कुरान कहता है یہ قرآن بہت سی چیزیں قرآن پاک میں قیامت کا تذکرہ نہیں ہے، وقت اس کا نہیں ذکر کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی واضح طور پہ اس کا کہیں تذکرہ نہیں کیا، مگر احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ضرور ہے. قرآن پاک کہتا ہے کہ ہم نے ہر قوم کو موقع دیا، تاریخ کی ابتدا میں حامی پھر سامی، نسلیں دنیا کی سٹیج پر وقت گزار گئیں. اب یافس کی اولاد میں سے گوگ ماگوگ کا ٹائم ہے جس کو آپ جوج ماجوج کہتے ہیں. اگین قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کے تمام پھاٹکوں پر ان کا قبضہ ہوگا،
دروازوں پہ،
دنیا کے تمام پھاٹکوں کو پر ان کا قبضہ ہوگا. اگر آپ سمندروں میں ذکر کرتے ہیں راستوں کا تو آپ امیجن کر لیجئے گا، آج آپ پاناما کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ پاناما میں کہہ رہے ہیں کہ پاناما میں سب سے زیادہ جہاز جو ہیں وہ چائنا کے آ رہے ہیں. اگر آپ سویز کی بات کر لیں تو آپ کہتے ہیں چائنا. پھر جتنی اسٹریٹس کا ہم ذکر کرتے ہیں سمندروں میں، ان راستوں کا، آبی گزرگاہوں کا ذکر کرتے ہیں، ان آبی گزرگاہوں میں سے بھی زیادہ تر گزرگاہوں کے اوپر کس کا ٹریڈ گزر رہا ہے؟ یافس کی، اسی خاندان کا جن کو ہم